नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 वर्ष में पहली बार ब्याज दरों में कमी की है। नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी के साथ इसे 6.25% किया गया। लोकसभा में आम बजट 2025-26 पर चर्चा शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू। मेले में 42 देशों के 600 कारीगर अपने शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज शाम चीन के हार्बिन में शुरू होंगे। इन खेलों में भारत का 88 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। और टेनिस में आज चेन्नई ओपन चैलेंजर में पुरुष डबल्स में 2 भारतीय जोड़ी अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले खेलेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करीब 5 वर्ष बाद नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिन की बैठक के बाद मुंबई में आज ये घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा SDF की दर 6% और मार्जिनल स्थायी सुविधा MSF दर तथा बैंक दर 6.5% रहेगी।
The MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate shall be at 6.0% and the marginal standing facility rate and the bank rate shall be 6.5%. The MPC also decided unanimously to continue with a neutral stance and remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth.
बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए श्री मल्होत्रा ने यह भी घोषणा की कि रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन bank.in लागू करेगा। RBI ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह में वित्तीय निर्णय लेने और घरेलू बजट बनाने में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा प्रमुख रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करने के निर्णय के बाद बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 157 अंक गिरकर 77,901 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 50 अंकों की गिरावट के साथ 23,586 पर था। लोकसभा में आज आम बजट 2025-26 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के धर्मवीर गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट देश के सामने मौजूदा कृषि चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है और ये देश के गरीबों और वंचितों के लिए बड़ी समस्या है।
It did not offer any relief to the farmers as regard to the legal guarantee on MSP, waiving of loans of farmers, farming labourers, and not lifting or withdrawing GST on the farming equipment and machinery, and not giving a robust farm insurance or crop insurance scheme in the budget, sir. So it has totally failed to address to the grievances of our farming community.
समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह ने भी बजट की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी ने LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र सिंह ने केंद्रीय बजट की सराहना की। श्री सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया।
इस पूरे के पूरे बजट दस्तावेज को हमने 4 भागों में मांगा, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी। लेकिन किसानों की बात होती है, गरीब की बात होती है, युवाओं की बात होती है, बात चर्चा तक हो जाती है। ऐसी सरकार नहीं आई थी जिसने बात को यथार्थ में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है।
सरकार ने कहा है कि वो जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर विशेष ध्यान दे रही है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के सक्रिय समर्थन से सरकार भारत विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ चिकित्सा सेवा सुनिश्चित कर रही है। इससे पहले स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 30 वर्ष में मातृ मृत्यु दर की गिरावट दर वैश्विक स्तर पर 42% हो गई है।
जहां तक MMR का विषय है और IMR का विषय है, भारत ने दुनिया के तुलना में बहुत बेहतरीन प्रगति की है। जहां पिछले 30 वर्षों में ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन फॉर MMR 42% रहा है, वहीं भारत के अंदर ये 83% तक पहुंचा है। और इसके साथ ही जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन 55% रहा है, लेकिन भारत में इसकी गिरावट की दर 69% रही है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले वर्ष की समाप्ति तक 4,300 से अधिक कृषि उत्पादक संगठनों FPO ने ईनाम पोर्टल के साथ पंजीकरण करवाया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश भर में अब तक 10,000 से अधिक FPO गठित किए गए हैं।
एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को लेकर ये कृषि उपज मंडियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ता है, ताकि जहां किसान को उच्चतम मूल्य मिले और उच्चतम बोली लगे, वहां वो अपनी फसल बेच पाए। ईनाम मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज के ढेर को चारों दिशाओं से फोटो खींच के पोर्टल पर डाल सकता है, जिसे खरीदार बोली लगाने के पहले देख सकते हैं कि कैसा है। ईनाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हीरा उद्योग द्वारा अपने मानक और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वनियमन पर जोर दिया है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत से प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों की मांग बढ़ रही है और सरकार प्रमाणन और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी उपाय कर रही है।
ये एक तरफ G7 देशों के साथ इस विषय में चर्चा चल रही है। लैब ग्रोन डायमंड्स तो भारत में ही बनते हैं, मुंबई में, सूरत में और अभी कई और जगह लगने लग गई है। लैब ग्रोन डायमंड्स बन रहे हैं, वो भारत की शान बनेगी, उसमें वैल्यू एडिशन पूरी की पूरी भारत में रहेगी और भारत के लोगों को नौकरियां भी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड टर्म्स में और अधिक होगा।
लोकसभा में आज DMK सांसद कणिमोजी ने शून्यकाल के दौरान श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करने का मुद्दा उठाया। इससे पहले कई सांसदों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था। मीडिया से बातचीत में श्रीमती कणिमोजी ने कहा कि श्रीलंका के अधिकारियों ने 97 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी R.L.S. Vaz ने बताया कि 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। CEO वाज ने कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM को आयोग और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार के NDA सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा, जदयू और लोजपा के सांसदों ने श्री मोदी का अभिनंदन किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह और चिराग पासवान भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने बिहार से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के वास्ते उनसे मुलाकात की।
हम लोग PM से धन्यवाद देने के लिए बिहार के सांसद गए। बिहार को उन्होंने जो इस बार का बजट में मध्यम वर्गियों के लिए, सब वर्गों के लिए दिया है, बिहार को उन्होंने शुरू से ही कहा था कि ये पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं और गेटवे ऑफ पूर्वांचल है बिहार।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा हैं। मेले में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस सहित लगभग 42 देशों के 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर श्री शेखावत ने मेले को एकता और रचनात्मकता का प्रतीक बताया। और अब खबरें महाकुंभ से। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय प्रयागराज में महाकुंभ में आज शाम एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर के जाने माने कलाकार संगीत, नृत्य और कला की शानदार प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे।
महाकुंभ मेला न केवल श्रद्धा और आस्था का महापर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में वैश्विक मंच के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। गंगा पंडाल में होने वाले इस आयोजन में श्रद्धालु आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कला दोनों का आनंद उठा सकेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रतिष्ठित कलाकार जैसे ओडिसी नृत्यांगना सोनल मानसिंह और डोना गांगुली के साथ साथ कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन और सुरेश वाडकर जैसे प्रसिद्ध गायक महाकुंभ की शाम को मनोरंजक बनाएंगे। इसके अलावा विभिन्न भारतीय शास्त्रीय और संगीत विधाओं के प्रतिष्ठित कलाकार भी महाकुंभ की शाम को संगीतमय बनाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
त्रिवेणी संगम महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 10 फरवरी को त्रिवेणी संगम में पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी कामेश्वर चौपाल की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री चौपाल एक समर्पित राम भक्त थे, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आज शाम चीन के हार्बिन में शुरू होंगे और इस महीने की 14 तारीख तक चलेंगे। खेलों की आयोजन समिति के उपमहासचिव और मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने एशियाई शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। इन खेलों में भारत का 88 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा, जिसमें 59 एथलीट और 29 टीम अधिकारी शामिल हैं। टेनिस में आज शाम चेन्नई ओपन चैलेंजर में पुरुष डबल्स में दो भारतीय जोड़ी अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले खेलेगी। पहले सेमीफाइनल में साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त ताइवान के रे हो और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू क्रिस्टोफर रोमियोस की जोड़ी से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 पर शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में अन्य भारतीय जोड़ी जीवन नेदुनचेझियन और विजय सुंदर प्रशांत जापानी जोड़ी शिंतारो मोचिजुकी और कैतो उयसुगी के साथ खेलेगी। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज शाम मेजबान उत्तराखंड का मुकाबला पुरुष फुटबॉल के फाइनल में केरल से होगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। सर्विसेज 31 स्वर्ण, 13 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर है। कर्नाटक 34 स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र 19 स्वर्ण, 38 रजत और 37 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH प्रणाली की स्थापना की है। ये प्रणाली शिकायतों का क्षेत्रवार विश्लेषण प्रदान करेगी। ये हेल्पलाइन कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1915 के जरिए सेवाओं या उत्पादों से संबंधित किसी तरह की शिकायत के लिए उपलब्ध होगी। विभाग ने बताया है कि तकनीक संचालित नई प्रणाली का उद्देश्य उपभोक्ता मुद्दों, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र के मुद्दों का तीव्र और कुशल समाधान को दुरुस्त बनाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 वर्ष में पहली बार ब्याज दरों में कमी की है। नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी के साथ इसे 6.25% किया गया। लोकसभा में आम बजट 2025-26 पर चर्चा शुरू। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू। मेले में 42 देशों के 600 कारीगर अपने शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज शाम चीन के हार्बिन में शुरू होंगे। इन खेलों में भारत का 88 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।